दादा भगवान प्ररूपित ज्ञानी पुरुष की पहचान, संकलन डॉक्टर निरुबहन अमीन। ये ऑडियो बुक का रिकॉर्डिंग है, दादा भगवान ज्ञानी पुरुष की पहचान, प्रकाशक दादा भगवान फाउंडेशन की ओर से श्री अजीत सी पटेल। भाव मूल्य ये पुस्तिका का है, परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, यह भाव। त्रिमंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्वपावप्पणाशिणो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवई मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष की पहचान के लास्ट कवर पे ये लिखा हुआ है दादाश्री, कभी ज्ञानी पुरुष मिल जाए जो मुक्त पुरुष है, परमानेंट मुक्त हैं, ऐसा कोई मिल जाए तो अपना काम हो जाता है। शास्त्रों के ज्ञानी तो बहुत है, मगर उससे तो कोई काम नहीं चलेगा। सच्चा ज्ञानी चाहिए और मुक्त पुरुष चाहिए, मोक्ष का दान देने वाला चाहिए। दादाश्री, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान कौन, इसका इंट्रोडक्शन में जून 1958 की एक संध्या का करीब 6 बजे का समय, भीड़ से भरा हुआ सूरत शहर का रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 के बेंच पर बैठे श्री अंबालाल मूलजीभाई पटेल रूपी देह मंदिर में कुदरती रूप से, अक्रम रूप में, कई जन्मों से व्यक्त होने के लिए आतुर दादा भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हुए और कुदरत ने सर्जित किया अध्यात्म का अद्भुत आश्चर्य। 1 घंटे में उनको विश्व दर्शन हुआ। मैं कौन, भगवान कौन, जगत कौन चलाता है, कर्म क्या, मुक्ति क्या, इत्यादि जगत के सारे आध्यात्मिक प्रश्नों के संपूर्ण रहस्य प्रकट हुए। इस तरह कुदरत ने विश्व के सन्मुख एक अद्वितीय पूर्ण दर्शन प्रस्तुत किया और उसके माध्यम बने श्री अंबालाल मूलजीभाई पटेल, चरोतर क्षेत्र के भादरण गांव के पाटीदार, कॉन्ट्रैक्ट का व्यवसाय करने वाले, फिर भी पूर्ण तथा वितराग पुरुष। उन्हें प्राप्ति हुई। उसी प्रकार केवल 2 ही घंटे में अन्य मुमुक्षु जनों के भी वे आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। उनके अद्भुत सिद्ध हुए ज्ञान प्रयोग से उसे अक्रम मार्ग कहा। अक्रम अर्थात बिना क्रम के, और क्रम अर्थात सीढ़ी दर सीढ़ी, क्रमानुसार ऊपर चढ़ना। अक्रम अर्थात लिफ्ट मार्ग, शॉर्टकट। आप श्री स्वयं प्रत्येक को दादा भगवान कौन का रहस्य बताते हुए कहते थे कि ये दिखाई देने वाले दादा भगवान नहीं हैं, वे तो A.M. पटेल हैं। हम ज्ञानी पुरुष हैं और भीतर प्रकट हुए हैं, वे दादा भगवान हैं। दादा भगवान तो 14 लोक के नाथ हैं, वे आप में भी हैं, सभी में हैं, आप में अव्यक्त रूप में रहे हुए हैं और यहाँ संपूर्ण रूप से व्यक्त हुए हैं। दादा भगवान को मैं भी नमस्कार करता हूँ। व्यापार में धर्म होना चाहिए, धर्म में व्यापार नहीं, इस सिद्धांत से उन्होंने पूरा जीवन बिताया। जीवन में कभी भी उन्होंने किसी के पास से पैसा नहीं लिया, बल्कि अपने व्यवसाय की अतिरिक्त कमाई से भक्तों को यात्रा करवाते थे। परम पूजनीय दादा श्री गांव गांव देश विदेश परिभ्रमण करके मुमुक्षुजनों को सत्संग और स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। आप श्री ने अपने जीवन काल में ही पूजनीय डॉक्टर निरुबहन अमीन को स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करवाने की ज्ञान सिद्धि प्रदान की थी। दादाश्री के देह विलय पश्चात आज भी पूज्य डॉक्टर निरुबहन अमीन गांव गांव देश विदेश भ्रमण करके मुमुक्षुओं को सत्संग और स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति निमित्त भाव से करवा रहे हैं, जिसका लाभ हजारों मुमुक्षु लेकर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद। समर्पण, ये समर्पण काव्य के द्वारा पूज्य डॉक्टर निरुबहन अमीन का रचा हुआ है। अहो अहो ये अक्रम मार्गी आप्तवाणी, अहो अहो ये अक्रम मार्गी आप्तवाणी, तेज पुंज प्रकटाती अज्ञान नाशकारिणी, हजारों का अंतरदाह छुड़ाते प्रगट मोक्षदानी, अहो कुदरती बलिहारी परमाश्चर्य होनी। आप्त पुरुष श्रीमुख से निकली आप्तवाणी, हृदय स्पर्शिणी अनंत संसार विनाशिणी, स्यादवाद अनेकांत निचपद की ही वाणी, सर्व नई सदा स्वीकार्य मोक्षार्थ प्रमाणी। संसार मोक्ष पंथ पर परम विश्वासनिया, अनादि अंधेरे में प्रगट प्रत्यक्ष दिया, विज्ञानी वितरागी वाणी वचन सिद्धिता, कारुण्य भाव से जगत कल्याणार्थे समर्पिता। निवेदन, डॉक्टर निरुबहन अमीन का लिखा हुआ निवेदन है। आप्तवाणी मुख्य ग्रंथ है, जो दादा भगवान की श्रीमुख वाणी से ओरिजिनल वाणी से बना है। वो ही ग्रंथ के साथ विभाजन किए गए हैं ताकि वाचक को पढ़ने में सुविधा हो। पहला, ज्ञानी पुरुष की पहचान। दूसरा, जगत कर्ता कौन। तीसरा, कर्म का सिद्धांत। चौथा, अंतःकरण का स्वरूप। पांचवा, यथार्थ धर्म। छठा, सर्व दुखों से मुक्ति। सातवा, आत्म जाना उसने सर्व जाना। परम पूज्य दादाश्री हिंदी में बहुत कम बोलते थे, कभी हिंदी भाषी लोग आ जाते थे जो गुजराती नहीं समझ पाते थे, उनके लिए पूज्य श्री हिंदी बोल लेते थे। वो वाणी जो कैसेट में से ट्रांसक्राइब करने की करके ये आप्तवाणी ग्रंथ बना है, वो ही आप्तवाणी ग्रंथ को फिर से संकलित करके ये सात छोटे ग्रंथ बनाए गए हैं। उनकी हिंदी प्योर हिंदी नहीं है, फिर भी सुनने वाले को उनका अंतर आशय एग्जैक्ट समझ में आ जाता है। उनकी वाणी हृदय स्पर्शी हृदय भेदी होने के कारण जैसी निकली वैसी ही संकलित करके प्रस्तुत की गई है, ताकि सुग्न वाचक को उनके डायरेक्ट शब्द पहुँचे। उनकी हिंदी यानी गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण फिर भी सुनने में पढ़ने में बहुत मीठी लगती हैं, नेचुरल लगती है, जीवंत लगती हैं। जो शब्द हैं वो भाषा की दृष्टि से सीधे साधे हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष का दर्शन निरावरण है। इसलिए उनके प्रत्येक वचन आशयपूर्ण, मार्मिक, मौलिक और सामने वाले के व्यू पॉइंट को एग्जैक्ट समझकर निकलने के कारण श्रोता के दर्शन को सुस्पष्ट खोल देते हैं और ऊंचाई पर ले जाते हैं और ऊंचाई पर ले जाते हैं। जय सच्चिदानंद, डॉक्टर निरुबहन अमीन। अभी ये आप्तवाणी का ज्ञानी पुरुष दादा श्री, जिनके भीतर दादा भगवान प्रकट हुए थे, उनका सत्संग शुरू होता है। हमारी हिंदी का हेडिंग है। दादा श्री कहते हैं, हमारी हिंदी बराबर ठीक नहीं है ना? प्रश्न करता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप हिंदी अच्छी ही बोल रहे हैं। दादा श्री, हमको हिंदी बोलने का ही नहीं आता। प्रश्न करता, नहीं आपकी हिंदी बहुत मीठी है, आप बोलिए। दादा श्री, मीठी तो मेरी वाणी है, हिंदी नहीं, मेरी वाणी मीठी है। आपको मेरी बात समझ में आती है ना? ऐसा है कि हमारा हिंदी लैंग्वेज पे काबू नहीं है, खाली समझने के लिए बोलते हैं। 5% हिंदी है और 95% दूसरी सब मिक्सचर है, मगर टी चाय जब बनेगी तब चाय बहुत अच्छी हो जाएगी। परम पूज्य दादा भगवान, जिनको कहीं आध्यात्मिक मुमुक्षुओं, आध्यात्मिक चाहकों ने उनको दादा भगवान से पहचाना है। बहुत लोग कहते थे ये ज्ञानी पुरुष है, दादा श्री कहते थे, उनके भीतर दादा भगवान प्रकट हुए हैं। जय सच्चिदानंद। अभी ये आता है, संपादकीय है, पूज्य डॉक्टर निरुबेन ने लिखा हुआ है ज्ञानी पुरुष की पहचान का, एंड इट ये बहुत डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है ज्ञानी पुरुष का, जिनको सुन के ही हमारे भीतर अहो अहो हो जाता है ज्ञानी पुरुष के लिए। संपादकीय, संसार का बंधन किससे हैं? प्रश्न, जवाब, अज्ञानता से। अज्ञानता कैसी? जवाब, निज स्वरूप की। अज्ञानता जाए किस तरह से? जवाब, ज्ञान से, निज स्वरूप के ज्ञान से, मैं कौन हूं इसकी पहचान से। मैं कौन हूं की पहचान कैसे हो? जवाब, प्रत्यक्ष प्रगट ज्ञानी पुरुष मिले, उनकी पहचान हो, उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिल जाए तब। और ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या है? जो निरंतर आत्मा में ही रहते हैं, जिनकी निरंतर स्वपरिणति ही है, जिन्हें इस संसार की कोई भी विनाशी चीज नहीं चाहिए। कंचन कामिनी कीर्ति मान शिष्य की भीख जिन्हें नहीं है, वह है ज्ञानी पुरुष। ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो उनके चरणों में सर्वभाव समर्पित करके आत्मा प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वयं आत्मज्ञान पाना अति अति कठिन है, स्वयं आत्मज्ञान पाना अति अति कठिन है, लेकिन ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो अति अति सरल है। लेकिन ज्ञानी पुरुष की उपस्थिति में भी ज्ञानी पुरुष की पहचान सामान्य जन को होना बहुत कठिन है। जौहरी होगा वह तो हीरे को परख लेगा, किंतु ज्ञानी पुरुष को पहचानने वाले जौहरी कितने हैं। प्रस्तुत ग्रंथ की प्रस्तावना में ज्ञानी पुरुष की पहचान उनकी आंतरिक परिणति के बारे में प्रकाश डालने का अल्प प्रकाश किया गया है। जो सुग्नवाचक को ज्ञानी पुरुष की पहचान और उनके प्रति अहोभाव प्रकट करने में सहायक ही हो सकेगा। दादा भगवान कौन है? जो दिखाई देते हैं वे दादा भगवान नहीं हैं, वे तो A.M. पटेल हैं, लेकिन भीतर में जो प्रकट हो गए हैं वह दादा भगवान हैं। वह 14 लोक के नाथ हैं। आपके अंदर, आपके भीतर भी वही दादा भगवान हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ज्ञानी पुरुष के अंदर संपूर्ण व्यक्त प्रकट हो गए हैं और आपके भीतर व्यक्त नहीं हुए हैं। जो भीतर प्रकट हुए हैं वह दादा भगवान के साथ ज्ञानी पुरुष निरंतर रहते हैं। जब व्यवहार का उदय होता है तब A.M. पटेल के साथ होना पड़ता है, नहीं तो दादा भगवान के साथ अभेद स्वरूप से तद्रूप ही रहते हैं। प्रश्न, दादा भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इसके द्वारा जो अनुभव में आते हैं वही दादा भगवान हैं। इस देह में भी जो मैकेनिकल भाग है, चंचल भाग है, वह दादा भगवान नहीं है, अलग भाग है, दरअसल आत्मा है, वह दादा भगवान हैं। जो खाते हैं, पीते हैं, धंधा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या तो धर्म ध्यान करते हैं, वह सब मैकेनिकल हैं, वह दरअसल आत्मा नहीं है। दरअसल आत्मा तो स्वयं परमात्मा है, वो ही दादा भगवान है। इसमें ज्ञानी पुरुष कौन? जो ज्ञान की वाणी बोलते हैं उन्हें व्यवहार में ज्ञानी पुरुष कहते हैं, और भीतर में प्रकट हुए बिना ज्ञान की वाणी नहीं बोली जा सकती। और भीतर में प्रकट हुए बिना ज्ञान की वाणी नहीं बोली जा सकती। भीतर में प्रकट हुए हैं वो ही दादा भगवान हैं। ज्ञानी पुरुष के जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोष हैं, जो लोगों की समझ में भी नहीं आ सकते और जगत के किसी भी जीव को किंचित ही नुकसान करता नहीं, ऐसे दोषों को जो प्रकाशमान करते हैं वह दादा भगवान हैं। और ज्ञानी पुरुष उस दोषों को उनके प्रकाश में जानते हैं। ऐसे पूर्ण स्वरूप दादा भगवान का पद प्राप्त करने के लिए, उनके साथ अभेद रहने के लिए ज्ञानी पुरुष खुद दादा भगवान को नमस्कार करते हैं, उनकी भजना करते हैं। ।1958 में सूरत स्टेशन पर उन्हें आत्मज्ञान अपने आप स्वयं ही प्रकट हुआ। ज्ञान के प्रागट्य का कारण बताते हुए दादाजी कहते हैं कि कितने जन्मों के लिए का ये फल है, कितने जन्मों की लिंक का ये फल है। वह अनुभूति होने के बाद उनका ईगोइज्म और ममत्व खत्म हो गए और खुद मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न हो गए। ये ज्ञान प्रकट हुआ, उसी दिन खुद ज्ञानी हुए। उसके अगले दिन तक वे अज्ञानी ही थे, ऐसी हकीकत वे बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद आत्मा का स्पष्ट अनुभव हुआ, पूर्णाहुति हुई। बाद में उन्होंने अम्बालाल मुलजीभाई पटेल के साथ सारी जिंदगी में एक पल भी तन्मयता नहीं की। जब से ज्ञान प्रकट हुआ है तब से अम्बालाल उनके सर्वप्रथम पड़ोसी हैं, थे पड़ोसी की तरह ही रहते हैं। देह और आत्मा की कैसी भिन्नता। दादा श्री को कैसा ज्ञान प्रकट हुआ है, उन्हें केवल ज्ञान में सिर्फ 4 डिग्री की ही कमी थी। केवल ज्ञानी को ज्ञान में सब कुछ दिखता है और उन्हें वह सब कुछ समझ में आता है। दर्शन संपूर्ण है, ज्ञान में 4 डिग्री की कमी है। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं कि मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं आता, मैं आत्मा की बातें के अलावा और कुछ नहीं जानता। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वह मैं जानता हूँ। आत्मा जो देख सकती है वह मैं देख सकता हूँ। व्यवहार में वे धंधाधारी आदमी थे, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स सभी भरते थे, कंट्रैक्ट का नंगा धंधा भी करते थे, फिर भी इन सब में ज्ञानी पुरुष संपूर्ण वीतराग रहते थे। वह वीतराग कैसे रहते थे, आत्मज्ञान से, संपूर्ण जागृति से। कई लोग उन्हें पूछते हैं कि आपको ये सिद्धि किस तरह प्राप्त हुई। उसका उत्तर देते हुए दादाश्री कहते हैं कि क्या इसकी नकल करनी है, ये नकल करने जैसी चीज नहीं है। ये ज्ञान तो बट नेचुरल प्रकट हो गया है। उन्हें भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी लाइट हो जाएगी। उन्हें तो छोटे से दिए को कुछ समकित जैसा इस जन्म में प्राप्त होगा ऐसी आशा थी, मगर ये तो संपूर्ण प्रकाश हो गया, संपूर्ण निर्विकल्प पद प्राप्त हुआ। भगवान संज्ञा ये नाम है या विशेषण, भगवान संज्ञा ये नाम है या विशेषण। भगवान तो विशेषण है और जो भी कोई मनुष्य भगवत गुणों की प्राप्ति करता है उसे ये विशेषण मिलता है। ज्ञानी पुरुष का पद तो निर्विशेष पद है, उनको तो किसी भी विशेषण की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। ज्ञानी पुरुष को भगवान कहना यानी उनको हीन पद में बिठाने जैसा है। जो मन का मालिक नहीं, देह का मालिक नहीं, वाणी का मालिक नहीं, कोई चीज का मालिक नहीं, वह इस संसार में भगवान है। ज्ञानी पुरुष देह होने के बाद बावजूद ज्ञानी पुरुष देह होने के बावजूद भी एक पल भी देह के मालिक नहीं होते। ऐसे ज्ञानी पुरुष सारी परसत्ता को जानते हैं और स्वसत्ता को भी जानते हैं। खुद की स्वसत्ता में वे ज्ञाता दृष्टा परमानंदी रहते हैं। ज्ञानी पुरुष एक पल भी संसार में नहीं रहते और एक पल भी अपने स्वरूप के सिवा अन्य कोई संसारी विचार उनको नहीं आता। ज्ञानी पुरुष में तो अपनापन ही नहीं रहता, देह के मालिक नहीं होते, इसलिए उनको मरना भी नहीं पड़ता, खुद अमर पद में रहते हैं। और ज्ञानी कृपा का इतना सामर्थ्य है कि वही पद वे दूसरे को दे सकते हैं, जो बड़ी आश्चर्यकारी घटना है। ज्ञानी पुरुष निरंतर शुद्ध उपयोग में रहते हैं, वह शुद्ध उपयोग मुक्ति में फलित होता है। और निरंतर शुद्ध उपयोगी है, मन वचन काया का मालिक की भाव नहीं, इसलिए उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता, हिंसा के सागर में रहते हुए भी, जिसकी निरंतर आत्म परिणाम में ही स्थिति है, उसे कोई कर्म ही नहीं स्पर्श करता। ऐसी अद्भुत दशा ज्ञानी पुरुष की है, जो देह के स्वामी नहीं, वे समग्र ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये एम पटेल जो दिखाई देते हैं, वह है तो मनुष्य ही, वह है तो मनुष्य ही, किंतु एम पटेल की जो कृतियां हैं और उनकी जो एकाग्रता है, वो परमात्मा भी नहीं, वो पर रमणता भी नहीं और पर परिणाम भी नहीं। फिर से, ये एम पटेल जो दिखाई देते हैं, वह है तो मनुष्य ही, किंतु एम पटेल की जो कृतियां हैं और उनकी जो एकाग्रता है, वह पर रमणता भी नहीं और पर परिणाम भी नहीं, निरंतर स्वपरिणाम में ही उनकी स्थिति है, निरंतर स्वपरिणाम में रहने वाले, कभी कभार हजारों वर्षों में एक ही होते हैं। आंशिक स्वरमणता किसी को हो सकती है, किंतु सर्वांश स्वरमणता वो भी संसारी वेश में नहीं होती, इसलिए इसे आश्चर्य लिखा गया है। ना असंयति पूजा नाम का दिट आश्चर्य है यह। आत्म परिणाम और क्रिया परिणाम, ज्ञान धारा और क्रियाधारा दोनों ज्ञानी पुरुष में भिन्न वर्तना में होती हैं। आत्मपरिणाम और क्रिया परिणाम, ज्ञान धारा और क्रियाधारा दोनों ज्ञानी पुरुष में भिन्न वर्तना में होती है। ज्ञानी पुरुष को निरंतर स्वभाव भाव होता है, जो कषाय रहित है, जहाँ पर परिणति उत्पन्न नहीं होती। ऐसे ज्ञानी पुरुष के दर्शन मात्र से कल्याण होता है। ज्ञानी पुरुष यानी संपूर्ण प्रकाश, प्रकाश में कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। वह सब कुछ जानते हैं कि विश्व क्या है, किस तरह चलता है, भगवान कहाँ है, हम कौन हैं। ज्ञानी पुरुष तो वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी है। विश्व में एक भी ऐसा परमाणु नहीं कि जो उन्होंने देखा न हो, एक विचार ऐसा नहीं कि जो उन्होंने ध्यान के बाहर रह गया हो, उनके ध्यान के बाहर रह गया हो। ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान में देखकर तमाम प्रश्नों के तत्क्षण समाधानकारी प्रत्युत्तर देते हैं। ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान में देखकर तमाम प्रश्नों के तत्क्षण समाधानकारी जवाब प्रत्युत्तर देते हैं। उनके जवाब किसी शास्त्र के आधार से नहीं निकलते, मौलिक जवाब रहते हैं। वे सोचकर शास्त्र का याद करते नहीं बोलते, वे सोचकर शास्त्र का याद करके नहीं बोलते, केवल ज्ञान में देख कर बोलते हैं, केवल ज्ञान में के चंद ज्ञेयों को देख के नहीं, वे देख नहीं पाते, केवल ज्ञान के चंद ज्ञेयों को वे देख नहीं पाते। इस काल में, इस क्षेत्र में संपूर्ण केवल ज्ञान असंभव है। अज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक के सर्वदर्शन की बातें उन्होंने सुस्पष्ट की हैं। उनकी बातें स्थूल सूक्ष्म से भी ऊपर की सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की है। ज्ञानी पुरुष के मुख पर निरंतर मुक्त हास्य होता है। कषाय से मुक्त होने पर मुक्त हास्य उत्पन्न होता है। सारा विश्व निर्दोष दिखाई देने पर मुक्त हास्य उत्पन्न होता है। और मुक्त हास्य वाले पुरुष के दर्शन मात्र से कल्याण होता है। मन से मुक्त, बुद्धि से मुक्त, अहंकार से मुक्त, चित्त से मुक्त, वहाँ मुक्त हास्य है। वीतरागता है, वहाँ मुक्त हास्य है। ऐसा मुक्त हास्य सिर्फ ज्ञानी पुरुष को ही होता है। मुक्त हास्य तो विश्व की अजायब चीज है। ज्ञानी पुरुष को जबरदस्त यश नाम कर्म होता है, इसलिए उनके नाम से अनेकों को, अनेकों के काम सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष इसे चमत्कार या मैंने किया ऐसा कभी नहीं कहते हैं। इसे वह यश नाम कर्म का फल कहते हैं। वे नहीं चाहते फिर भी लोग उन पर यश कलश डाले बिना नहीं रहते हैं। ज्ञानी पुरुष को अनंत प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिसे विश्व की किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं होती, उन्हें अनंत प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती हैं। ज्ञानी पुरुष में आत्मशक्ति संपूर्ण व्यक्त हो गई हैं, उनके निमित्त से दूसरों को भी आत्मशक्ति व्यक्त हो जाती है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और भव से जो सदा अप्रतिबद्ध होकर विचरते हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानी पुरुष को संसार में किसी भी चीज का बंधन नहीं है। ज्ञानी पुरुष वह है, ज्ञानी पुरुष वह है कि जिससे निरंतर आत्मोपयोग रहता है, अंतरंग में भी निस्पृह ऐसे आचार युक्त हैं, आचरण युक्त हैं, अपूर्व वाणी को कभी भी न कही, न सुनी या न पढ़ी हो, फिर भी प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, जिसे न गर्व है, न गारवता है, न अपनापन है, सदा मुक्त हास्य से सभर जिनका मुखारविंद दे दीप्यमान है, ऐसे ज्ञानी पुरुष स्वयं देहधारी परमात्मा है, मूर्तमूर्त मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष दाता है, अनेकों को मोक्ष सुख दिलाने वाले हैं। धन्य है इस काल को, धन्य है इस भारत के गुजरात की चरोतर भूमि को, और धन्य है उस जननी को जिसने जगत को आज देहधारी परमात्मा अर्पण किया। ज्ञानी पुरुष के गुणों को तो कोई भी पूरा बयान नहीं कर सकता। ज्ञानी पुरुष में 1008 गुण होते हैं। उनमें से मुख्य चार है, सूर्य जैसे प्रतापी और चंद्र जैसे शीतल। दोनों विरोधाभासी गुण ज्ञानी पुरुष में एक साथ प्रकट होते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष स्वयं आश्चर्य की प्रतिमा है और उनके पीछे आश्चर्यों की परंपरा सर्जित होती रहती है। उन परंपराओं का शास्त्रों में भी अंकित होकर हजारों मोक्षार्थियों को पथ दर्शक बने रहना ये आश्चर्यों की परंपरा का परम आश्चर्य है। ज्ञानी पुरुष मेरु समान अडोल और सागर समान गंभीर होते हैं। सहज क्षमा, रुजुता, मृदुता, करुणा के सागर, ऐसे अनेक गुण उनमें होते हैं। उनको कोई गाली गलौज करे, मारपीट करे तो भी उस पर उनकी विशेष करुणा बहती है। क्षमा उन्हें करनी नहीं पड़ती, सहज क्षमा ही उनकी रहती है। संसार में सर्व याचकपन से मुक्त हुए हैं उसे ज्ञानी पद प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष आश्रम का श्रम नहीं करते, मंदिर मठ बांधने की भीख उनमें नहीं होती। सामने वाले प्रति संसारी अपेक्षा से, भौतिक की अपेक्षा से संपूर्ण निस्पृह और आत्म अपेक्षा से संपूर्ण सहस्पृह, ऐसे सहस्पृह निस्पृह ज्ञानी पुरुष होते हैं। ज्ञानी पुरुष संपूर्ण अपरिग्रही होते हैं। उनके लक्ष्य में दुनिया की कोई चीज रहती नहीं। निरंतर जिसका लक्ष्य आत्मा में ही रहता है वह परिग्रह के सागर में रहते हुए भी अपरिग्रही है। जो तमाम द्वंद्वों से सुख दुख राग द्वेष मान अपमान सत्य असत्य पाप पुण्य जैसे सारे द्वंद्वों से पर हो गए हैं वह ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष द्वंद्वातीत होते हैं। वह मुनाफे को मुनाफे के रूप से जानते हैं, घाटे को घाटे से घाटे के रूप से जानते हैं। मुनाफे घाटे की उन पर कोई असर नहीं होती। मेरापन गया उसका संसार अस्त हो गया, मेरापन गया उसका संसार अस्त हो गया, ऐसी उनकी स्थिति होती है। ज्ञानी पुरुष संपूर्ण निराग्रही होते हैं। उनमें किंचित भी आग्रह नहीं होता तो फिर विग्रह तो उनको कहाँ से हो सकता है। ज्ञानी पुरुष सर्वकाल मुक्तावस्था में ही होते हैं, सत्संग में भी मुक्त और काम धंधे पर भी मुक्त। प्रत्येक अवस्था में उनको सहज समाधि ही रहती है। ज्ञानी पुरुष को कोई भय नहीं क्योंकि वे बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई गोलमाल उनमें नहीं होती। ज्ञानी पुरुष निरंतर वर्तमान में ही रहते हैं। काल को उन्होंने वश किया होता है, काल को उन्होंने वश किया होता है। वर्तमान में रहने से उन्हें जब देखो तब फ्रेश ही दिखते हैं। भूतकाल और भविष्य काल का सूक्ष्म भेद तो ज्ञानी के सिवा कोई नहीं कर सकता। ज्ञानी पुरुष निरंतर अप्रयत्न दशा में ही होते हैं। उनको भी प्रकृति होती है लेकिन प्रकृति का उन पर कोई प्रभुत्व नहीं होता। वे खुद की संपूर्ण स्वतंत्रता में रहते हैं। वे ज्ञानी पुरुष की प्रकृति सहज होती हैं क्योंकि उनमें अहंकार की दखल नहीं होती और इसलिए आत्मा भी सहज होती हैं। ज्ञानी पुरुष सहज आत्मा स्वरूप होते हैं, सहज भाव से निरीक्षक दशा में ही विचरते हैं। ज्ञानी पुरुष को किसी चीज की इच्छा नहीं होती इसलिए उनका निरंतराय पद होता है। ज्ञानी पुरुष का व्यवहार आदर्श होता है। किसी को दुख के निमित्त से जरा सा भी अड़चन नहीं पहुंचाते, किसी को खुद के निमित्त से जरा सा भी अड़चन नहीं पहुंचाते, वे समझ पूर्वक के सरल होते हैं। लोग उन्हें बोले समझते हैं, लेकिन वे जानबूझकर लोगों को छलने देते हैं। उनको जीवन में किसी से संघर्ष हुआ ही नहीं, क्योंकि उनमें कॉमन सेंस टॉप मोस्ट रहती हैं। कॉमन सेंस से हित और अहित तुरंत दर्शन में आ जाता है और आत्महित एक पल भी बिगड़ने नहीं देते। ज्ञानी पुरुष तो संसार में रहते हुए भी वीतराग हैं। ज्ञानी पुरुष की प्रत्येक क्रिया राग द्वेष रहित होती है और अज्ञानी की राग द्वेष सहित होती है। इतना ही फर्क होता है दोनों में। ज्ञानी पुरुष किसी भी तरह से पहचान नहीं जा सकते। ज्ञानी पुरुष किसी भी तरह से पहचाने नहीं जा सकते, मात्र उनकी वीतरागता से उनको पहचाने जाते हैं। अक्रम ज्ञानी वीतराग है, लेकिन संपूर्ण वीतराग नहीं। वे खटपट वाले वीतराग हैं। उनमें एक खटपट रह गई है कि किस तरह से सबको मोक्ष सुख दूं, दूसरे का आत्यंतिक कल्याण करने के लिए वे भी खटपट कर लेते हैं। संपूर्ण वीतराग तो कोई ऊपर बढ़े तो उसके प्रति भी वीतराग, और नीचे गिरे तो उसके प्रति भी वीतराग। और अक्रम ज्ञानी तो खटपट वाले वीतराग, वे तो नीचे गिरने वाले को खटपट करके भी ऊपर उठा लेते हैं। वो ही अत्यंत करुणा है ज्ञानी पुरुष की। ज्ञानी पुरुष को, ज्ञानी पुरुष का प्रेम वह शुद्ध प्रेम है। प्रेम, ऐसा प्रेम वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, जहाँ सांसारिक कोई स्वार्थ नहीं, केवल आत्मार्थ के लिए निरंतर करुणा बरसती है। वहाँ शुद्ध प्रेम, परमात्मा प्रेम प्रकट होता है। ज्ञानी पुरुष को कभी भी किसी के साथ मतभेद नहीं होता। हजारों भिन्न भिन्न प्रकृतियों से पाला पड़ने के बावजूद भी वे सभी के साथ बिना मतभेद सबसे अभेदता से प्रेम स्वरूप से रहते हैं। ये ज्ञानी पुरुष का बड़ा अजायब गुण है। उनको गाली देने वाले को भी उतने ही प्यार से संवारते हैं जितना फूल चढ़ाने वाले को। उनका प्रेम तो फूल चढ़ाए तो बढ़ता नहीं और गाली दे तो कम होता नहीं। निरंतर अगुरु अलघु प्रेम रहता है। कम होता चढ़ता प्रेम वह प्रेम नहीं किंतु आसक्ति है। जो कम होता है या बढ़ता प्रेम है वो प्रेम नहीं है किंतु आसक्ति है। ज्ञानी पुरुष की करुणा विश्वव्याप्त होती है, प्रत्येक जीव पर होती है। ये अनेकों के आधार होते हैं किंतु खुद किसी का आधार नहीं लेते। ज्ञानी पुरुष में अपार करुणा होती है, उनमें दया नहीं होती। उनमें दया नहीं होती क्योंकि दया वह अहंकारी गुण है, द्वंद गुण है। दया है तो दूसरी तरफ निर्दयता भरी होती ही है। ज्ञानी पुरुष द्वंद्वातीत होते हैं, सब पर समान कारुण्य भाव। चूहे पर भी करुणा और उसे मारने वाली बिल्ली पर भी इतनी ही करुणा। ज्ञानी पुरुष को त्याग या अत्याग करने का ही नहीं रहता। वे तो सहज भाव में रहते हैं, उदयाधीन उनका वर्तन होता है, राग द्वेष से पर ऐसी वितरागता उनकी विशेष लाक्षणिकता है। ज्ञानी पुरुष कोई स्टैंडर्ड में नहीं, आउट ऑफ स्टैंडर्ड पूर्ण दशा में है, इसलिए उन्हें माला फेरनी नहीं पड़ती, पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में हैं वे माला फिराते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। ज्ञानी पुरुष को पहचानना बहुत मुश्किल है, उन्हें न तो गेरुए वस्त्र हैं न सफ़ेद बोर्ड, उन्हें तो जिस लिबास में ज्ञान प्रकट हुआ हो वही लिबास में रहते हैं। वह फिर धोती कुर्ता काली टोपी क्यों ना हो, ज्ञानी पुरुष को पहचान लिया तो 14 लोक के नाथ की पहचान हो जाती है, क्योंकि 14 लोक के नाथ उनमें प्रकट हो गए हैं। ज्ञानी पुरुष धर्म संसार में रहते हुए भी गृहस्थ ही नहीं होते। सच्चा मुमुक्षु तो ज्ञानी पुरुष के नेत्र को देखते ही, आँखों में वितरागता देखते ही उन्हें पहचान लेता है। यदि यही दृष्टि नहीं खुली, यदि ये दृष्टि नहीं खुली तो उनकी वाणी से उनकी पहचान हो सकती है। ज्ञानी की वाणी स्यादवाद वाणी होती है, वो किसी भी नई का प्रमाण खंडित नहीं करती। शिव, वैष्णव, मुस्लिम, दिगंबरी, श्वेतांबरी, कोई भी पक्षपात वाले को ज्ञानी पुरुष की वाणी खुद ही की वाणी लगती है, खुद की ही वाणी लगती है। ज्ञानी पुरुष के श्रीमुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द नए शास्त्रों की रचना करते हैं। ज्ञानी पुरुष के श्रीमुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द नए शास्त्रों की रचना कर देते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप निकली हुई उनकी वाणी संपूर्ण निमित्ताधीन निकलती हैं। जिसके निमित्त से डायरेक्ट निकली उसके तो सर्व आवरण भेद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो दूर बैठा सुनता है या पुस्तक द्वारा पढ़ता है उसका भी काम हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञानी पुरुष आज प्रकट है, प्रत्यक्ष है, हाजिर है। ज्ञानी पुरुष की वाणी तो वाणी को ज्ञानी पुरुष की वाणी को प्रत्यक्ष सरस्वती कही जाती है, क्योंकि उनके भीतर के प्रकट परमात्मा को स्पर्श करके ये वाणी निकलती है, जो श्रोता के सर्व आवरण को भेद कर डायरेक्ट आत्मा को स्पर्श करती है और ज्ञान प्रकाश प्रकट करती है। ये चैतन्य वाणी सुनने वाले को अनंत अवतार के पापों को भस्मीभूत करती हैं। ये वितराग वाणी होती हैं और वितराग वाणी ही मोक्ष में ले जाती हैं। ज्ञानी पुरुष की वाणी अपूर्व होती है, पूर्वानुपूर्वी की नहीं। उनके मुख से निकला हुआ सीधा सादा घरेलू दृष्टांत ऐसी दृष्टि से देखकर बयान किया जाता है कि श्रोता का हृदय मेरे स्वानुभव की ही बात है वह कर नाच उठता है। फिर से, ज्ञानी पुरुष की वाणी अपूर्व होती है, पूर्वापूर्वी की नहीं। उनके मुख से निकला हुआ सीधा साधा घरेलू दृष्टांत ऐसी दृष्टि से देखकर बयान किया जाता है कि श्रोता का हृदय में मेरे स्वानुभव की ही बात है कहकर नाच उठता है। उनकी गहन से गहन बात बिल्कुल सीधे साधे सबके अनुभव के दृष्टांतों से मर्मस्थान को ही सुस्पष्ट करती है, सुस्पष्ट करती है। वे सादी सरल गांवठी भाषा में घरेलू बातों से लेकर तत्वज्ञान की, घरेलू बात से लेकर तत्वज्ञान की गहन बातों का विस्फोट करते हैं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी या पंडितों से लेकर भोली भाली अनपढ़ बुढ़िया भी गहन से गहन बात अति अति सरलता से समझ जाती हैं। उनकी बात समझाने की शैली और उनके प्रत्येक दृष्टांत आदि मौलिक होते हैं। ज्ञानी पुरुष की वाणी हित मित प्रिय और सत्य होती हैं। वे हमेशा सामने वाले के आत्महित में ही बोलते हैं, खुद के काम के लिए कभी दृष्टि ही नहीं होती। ज्ञानी पुरुष में अपनापन होता ही नहीं और इसलिए उनकी वाणी सामने वाले के साथ व्यवहार के अनुसार निकलती हैं। जैसा जिसका व्यवहार वैसी वाणी का उदय, जिसे किसी के भी साथ राग द्वेष नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसे वीतराग पुरुष की वाणी सामने वाले के दर्द के अनुसार निकलती हैं। यदि ये वह पुण्यात्मा हो और रोग खत्म होने पर आया हो तो ज्ञानी पुरुष के कठोर शब्द निकलकर उसके रोग को खत्म कर देते हैं। उनको किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं, किसी से कोई घाट नहीं, इसलिए वह निडरता से सामने वाले के आत्महित को लक्ष्य में ही रखकर स्पष्ट नग्न सत्य कह देते हैं, क्योंकि उनमें अपार करुणा होती है। ज्ञानी पुरुष का एक वाक्य अगर सीधा भीतर में उतर गया तो वो मोक्ष में ले जाए ऐसा होता है। ज्ञानी पुरुष तो सीधा मोक्ष मार्ग बता देते हैं, फिर शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ज्ञानी पुरुष के शब्द में खुद की किंचित ही बुद्धि चलाने में बहुत बड़ा धोखा है। ज्ञानी पुरुष के शब्द में खुद की किंचित ही बुद्धि चलाने में बहुत बड़ा धोखा है। और एक ही शब्द जैसा का जैसा ही पच गया तो वह शब्द ही उसे मोक्ष में ले जाएगा। ज्ञानी पुरुष की वाणी सामने वाले के पुण्य के अधीन निकलती हैं। वे खुद तो बोलते ही नहीं, वे तो सिर्फ देखते हैं कि कैसी वाणी निकलती हैं और सामने वाले का पुण्य कितना है। हर एक धर्म का, किसी भी प्रश्न का वे समाधान करा सकते हैं। ज्ञानी पुरुष की टेप रिकॉर्ड सारा दिन चलती हैं, फिर भी भगवान ने उन्हें मुनि कहा। ज्ञानी पुरुष की टेप रिकॉर्ड सारा दिन चलती हैं, फिर भी भगवान ने उन्हें मुनि कहा। स्व पर के आत्मार्थ सिवाय अन्य कोई भी हेतु जिस वाणी में नहीं, वह वाणी सारा दिन बोली जाए तो भी वे मुनि नहीं, महामुनि हैं। इसे परमार्थ मौन कहते हैं। बाकी भीतर में क्लेश, मन दुख और बाहर में मौन, उसे सच्चा मुनि कौन कहेगा। ज्ञानी पुरुष संयमी होते हैं। जब वाणी वर्तन संयमित होता है तब व्यवहार पूर्ण होता है। उनके वाणी और उनके वर्तन और उनके विनय मनोहर होते हैं। ज्ञानी पुरुष की बात हमारा आत्मा ही कबूल कर लेती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वे ही बैठे हुए हैं। उनको कोई भेद नहीं होता यदि हम जानबूझकर टेढ़ाई ना करें तो। ज्ञानी पुरुष श्रद्धा की परम मूर्ति हैं, यानी उनको मात्र देखते ही श्रद्धा आ जाती है। उनके पास श्रद्धा रखनी नहीं पड़ती, स्वयं आ जाती हैं। ऐसी श्रद्धा की मूर्ति कोई काल में नहीं होती। आज है तो उनका अनुसंधान करके काम निकाल लेना चाहिए। ज्ञानी पुरुष तो आप्त पुरुष हैं, यानी मोक्ष मार्ग में और संसार व्यवहार में पूर्ण तौर से विश्वसनीय, श्रद्धेय। प्रगट पुरुष का ही महत्मय है कि उनके दर्शन से ही आत्मशक्ति प्रकट होती है। ज्ञानी पुरुष लघुतम गुरुतम भाव में होते हैं। रिलेटिव में लघुतम भाव में, रियल में गुरुतम भाव में, और स्वभाव से अभेद भाव में होते हैं। जिसको मोक्ष चाहिए तो वहाँ गुरुतम भाव में, और कोई गाली दे मारे तो वहाँ लघुतम भाव में होते हैं। प्रत्येक जीव का शिष्य पद ग्रहण करने की दृष्टि जिसने पाई है वही ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी पुरुष तो विश्व के सेवक और सेवियर दोनों होते हैं। जगत की सेवा भी खुद लेते हैं और जगत को सेवा भी खुद देते हैं। प्रत्येक जीव का शिष्य पद ग्रहण करने की दृष्टि जिसने पाई है वही ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी पुरुष तो विश्व के सेवक और सेवियर दोनों होते हैं। जगत की सेवा भी खुद लेते हैं और जगत को सेवा भी खुद देते हैं। जब तक आत्मज्ञानी नहीं मिलते तब तक प्रभु के पास भक्ति मांगनी चाहिए, और ज्ञानी पुरुष मिले तो उनके पास मोक्ष मांगना। ज्ञानी पुरुष को भक्ति की जरूरत ही नहीं, लेकिन उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्षों को ज्ञानी पुरुष की भक्ति करना आवश्यक है। और ज्ञानी पुरुष के पास तो उनकी भक्ति नहीं होती बल्कि अपने ही आत्मा की भक्ति होती है। ज्ञानी पुरुष के पास तो उनकी भक्ति नहीं होती बल्कि अपने ही आत्मा की भक्ति होती है। उनकी आरती चरण विधि यानि अपने आप की ही आरती और चरण विधि होती है। ज्ञानी पुरुष के पास तो खुद को खुद के दर्शन करने के होते हैं। जहाँ चेतन प्रकट हुआ है ऐसे ज्ञानी पुरुष की भक्ति से चेतन प्रकट होता है। उनकी आराधना करना यानि शुद्धात्मा की आराधना करने के बराबर है। उनकी आराधना करना यानि शुद्ध आत्मा की आराधना करने का बराबर है। परमात्मा की आराधना करने बराबर हैं, और वही मोक्ष का कारण है। ज्ञानी पुरुष की भक्ति में कीर्तन भक्ति करना ये तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ज्ञानी पुरुष के अमूर्त भगवान के दर्शन कराते हैं। ज्ञानी पुरुष अमूर्त भगवान के दर्शन कराते हैं, तत्पश्चात मूर्ति के दर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। अमूर्त की भजना से मोक्ष मिलता है और मूर्ति की भजना से संसार। ज्ञानी पुरुष मूर्तामूर्त हैं। मूर्त और अमूर्त दोनों स्वरूप से होते हैं। उनकी भजना से संसार में अभ्युदय और अध्यात्म में आनुषंगिक दोनों फल मिलते हैं। संसार में विघ्न नहीं आते, शांति रहती हैं और मोक्ष प्राप्ति भी होती है। ज्ञानी पुरुष धर्म व्यवहार में भी संपूर्ण होते हैं। निरंतर अमूर्त में रहते हैं, अमूर्त के निरंतर दर्शन करते हैं, फिर भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वार देरासर माता जी के मंदिर में शिव के मंदिर में आदि सभी जगह में वे जाते हैं ताकि लोगों के लिए बाद में ये व्यवहार चालू रहे। अमूर्त के दर्शन अभी नहीं हुए और मूर्ति के दर्शन क्या करना, ऐसा तिरस्कार भाव लोगों में जाग ना जाए, इसलिए वे मिसाल देते हैं। ज्ञानी पुरुष का संग यानी सत का संग, परम सत्संग, उसे परमहंस की सभा कहते हैं। जहाँ ज्ञान और अज्ञान का विभाजन किया जाता है वह परमहंस की सभा, और जहाँ धर्म की बातें होती हैं वह हंस की सभा है, और जहाँ वाद विवाद हो, किसी की सच्ची बात भी सुनने की तैयारी नहीं, वहाँ कौवे की सभा है। ज्ञानी पुरुष के पास तो जो चीज चाहिए वह मिल सकती है। मोक्ष मांगे तो मोक्ष भी मिल सकता है, क्योंकि वे मोक्षदाता पुरुष होते हैं। शास्त्रकारों ने इसलिए ज्ञानी पुरुष को देहधारी परमात्मा कहा है, वहां संपूर्ण काम निकल जाएगा। आत्मा जानने जैसा है और उसे जानने के लिए ज्ञानी पुरुष के पास ही आना पड़ेगा। आत्मा जानने जैसा है और उसे जानने के लिए ज्ञानी पुरुष के पास ही आना पड़ेगा। शास्त्र का या पुस्तक का आत्मा नहीं चलेगा। पुस्तक में लाख दिए छपे हो लेकिन वे अंधेरे में प्रकाश देंगे नहीं, प्रत्यक्ष दिया ही रोशनी देता है। ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष दिया है, प्रत्यक्ष से ही अपना दिया प्रकट हो सकेगा। समस्त विश्व के कल्याण के ज्ञानी पुरुष निमित्त होते हैं, करता नहीं। वो चाहे सो दे सकते हैं क्योंकि उनमें किंचित भी कर्ता भाव नहीं होता। जहाँ तक कर्ता भाव है वहाँ तक पुद्गल का फल मिलता है, वहाँ आत्मा प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी पुरुष कर्ता पद में नहीं होते, उन्हें उपाय करने का या न करने का अहंकार नहीं होता। सहज भाव से उनको उपाय हो जाते हैं, निरुपाय उपाय उनका होता है। क्योंकि वे खुद उपेय भाव में रहते हैं इसलिए उन्हें उपाय करने का नहीं होता। ज्ञानी पुरुष सकाम कर्म भी नहीं करते और निष्काम कर्म भी नहीं करती, दोनों में बंधन ही है। जहाँ कुछ भी करने का भाव है वहाँ बंधन ही है। जगत जहाँ प्रवृत्त, ज्ञानी वहाँ निवृत्त। ज्ञानी जहाँ प्रवृत्त, जगत वहाँ निवृत्त। जगत की प्रवृत्ति प्रकृति के अधीन है। डिस्चार्ज में ज्ञानी पुरुष हस्तक्षेप नहीं करते। डिस्चार्ज में हस्तक्षेप करने से कर्म चार्ज होते हैं। ज्ञानी पुरुष के प्रत्येक कर्म दिव्य कर्म होते हैं, जो भीतर से निरंतर जागृत हैं। जो भीतर से निरंतर जागृत है अपने प्रत्येक कर्म को क्षय करके आगे बढ़ चुके हैं, जो क्षायक स्थिति में हैं उनके पास कोई बुद्धि चलाने वाला, उनके कर्म का दोष देखने वाला मारा जाएगा। ज्ञानी पुरुष तो एक पल भी पर परिणति में ही नहीं ठहरते, नाटक की तरह रोल अदा करके आगे बढ़ जाते हैं। जो स्वयं अबूध हैं वहाँ बुद्धि क्या चलाने की। ज्ञानी पुरुष निर्विकल्प, संपूर्ण निर्मोही और निर्ग्रंथ होते हैं। एक पल भी उनका उपयोग किसी में अटकता नहीं। निरंतर शुद्ध उपयोग ही रहता है। ज्ञानी पुरुष में एक भी मनोग्रंथि नहीं होती, उनको शुद्ध, उनको खुद का मन, उनको खुद का मन वश में रहता है। ज्ञानी पुरुष विश्व में एकमेव मन के डॉक्टर होते हैं। वे मन के सारे रोग मिटा देते हैं, नया रोग नहीं होने देते। इतना ही नहीं, वह मन और आत्मा को भिन्न करा सकते हैं। तत्पश्चात मन संपूर्ण काबू में रहने लगता है। ज्ञानी पुरुष में बुद्धि का अंश भी नहीं होता, उनमें बुद्धि संपूर्ण प्रकाशमान हो चुकी होती है, लेकिन ज्ञान प्रकाश प्रकट होने से बुद्धि का प्रकाश एक कोने में ही पड़ा रहता है। सूर्य नारायण के आगमन से दिए के प्रकाश की कैसी हालत होती है? आत्मानुभवी ज्ञानी पुरुष अबुद्ध होते हैं, वे विश्व में अद्वितीय होते हैं। शास्त्र ज्ञानी बुद्धि से पर नहीं होते। एक और अबुद्ध दशा आती है तो दूसरी ओर एक और अबुद्ध दशा आती है तो दूसरी ओर सर्वज्ञ दशा आती है, मगर ये कारण सर्वज्ञ दशा है, कार्य सर्वज्ञ दशा इस काल में, इस क्षेत्र में नहीं हो सकती, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। ज्ञानी पुरुष में बुद्धि ही नहीं, फिर भी जरासी है, क्योंकि संपूर्ण 360 डिग्रीज की बुद्धि खत्म हो जाती तो आज ये एम पटेल भी महावीर कह जाते, लेकिन 4 डिग्री बाकी है, इसलिए उतना अंतर रह गया। ज्ञानी पुरुष का चित्त निरंतर आत्मा में ही रहता है। जैसा फणिधर मुरली के सामने डोलता हो, फिर एक पल भी व्यग्रता कैसे हो सकती है? और इस संसार की कोई भी चीज उनके चित्त को आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसी महामुक्त दशा में ज्ञानी पुरुष विचरते हैं। ज्ञानी पुरुष अहंकार रहित होते हैं। विश्व में उनके सिवाय अन्य कोई निरहंकारी नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुष में अहंकार का अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए दुख परिणाम का उन्हें वेदन नहीं होता। ये बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? दादा भगवान? ज्ञानी पुरुष? नहीं, वह तो टेप रिकॉर्ड बोल रही है, ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड, वो ही कहता है, ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड वो ही वक्ता है। ज्ञानी पुरुष तो उसके ज्ञाता दृष्टा है और सब लोग श्रोता है। ज्ञानी पुरुष तो सिर्फ देख रहे हैं कि ये टेप रिकॉर्ड कैसी बजती है, उसमें कितनी गलतियां हैं। जीव मात्र बोलते हैं, वह टेप रिकॉर्ड ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सब लोग अहंकार करते हैं कि मैं बोलता हूँ, और ज्ञानी पुरुष में अहंकार नहीं होता, इसलिए वे जैसा ही है वैसा स्पष्ट कह देते हैं कि ये टेप रिकॉर्ड बोलती है। केवल ज्ञान में वे 4 डिग्री से नापास हुए हैं। केवल ज्ञान में वे 4 डिग्री से नापास हुए हैं, वरना वे यहां सब लोगों के बीच में नहीं होते। वे कब के मोक्ष में जा पहुँचे होते। ये तो नापास हुए तो कलिकाल में पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए काम आ गए। 4 डिग्री कम हैं इसलिए स्थूल और सूक्ष्म दोस्तों संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। सिर्फ सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोष उनमें रहे हैं जो अन्य किसी को किंचित अड़चन नहीं करते। वह तो उनके केवल ज्ञान प्रकट होने में आवरण करते हैं जिसे वे भलीभांति जानते हैं। सर्वदोष जिनके क्षय हुए हैं ऐसी ज्ञानी की निर्दोष भूमिका को क्या कहना। ज्ञानी पुरुष को भी प्रतिक्रमण करने पड़ते हैं लेकिन ये प्रतिक्रमण सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोषों के होते हैं। शुद्ध उपयोग करने के पर शुद्ध उपयोग चूकने पर तुरंत वे प्रतिक्रमण कर लेते हैं। स्वयं निर्दोष होकर सारे विश्व को निर्दोष देखने की दृष्टि पाकर ज्ञानी सारे विश्व को निर्दोष देखते हैं। प्रत्येक जीव को व्यवहार से भी वे निर्दोष देखते हैं। निरंतर अकर्ता पद में स्थित ज्ञानी अन्यों को तत्वदृष्टि से देखते हैं यानी अन्यों को भी अकर्ता देखते हैं फिर उन्हें कौन दोष करने वाला दिखेगा। अनंत अवतार से जे पूर्ण पुरुषोत्तम को अनंत अवतार से जिस पूर्ण पुरुषोत्तम को वे ढूंढते रहे वह इस अवतार में उनके ही देह में प्रकट हो गए। अज्ञानी को जरा सी सत्ता मिली तो वह उन्मत्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुष को सारे ब्रह्मांड का साम्राज्य मिलने पर भी जरा भी उन्मत्त नहीं होते। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने ज्ञानी पुरुष को देहधारी परमात्मा कहा है। दूसरे और किसी परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के बिना किसी का देहाध्यास नहीं जा सकता ज्ञानी पुरुष विज्ञान घन आत्मा में यानी एब्सोल्यूट आत्मा में स्थित हैं। यानी अंत में तो ज्ञानी पुरुष भी साधन स्वरूप है। साध्य तो विज्ञान स्वरूप आत्मा है। आत्मा विज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप नहीं। ज्ञान में करना पड़ता है विज्ञान में तो स्वयं क्रियाकारी है। विज्ञान सिद्धांतिक होता है अविरोधाभास होता है। धर्म और विज्ञान में बड़ा अंतर होता है। धर्म से संसार के भौतिक सुख मिलते हैं पुण्य बंधते हैं और विज्ञान से मोक्ष होता है। विज्ञान है वहाँ पुण्य नहीं पाप नहीं कर्म बंध भी नहीं। कर्मों की सिर्फ निर्जरा है संवर सहित। विज्ञान में कुछ छोड़ने का ही नहीं होता। विज्ञान में तो खुद ही अलग हो जाने का है खुद अलग हो गया उसका पजल सॉल्व हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ज्ञानी पुरुष में वह सामर्थ्य है कि दूसरों के सब पापों को एक साथ भस्मीभूत कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई भी एक पल भी देह में नहीं रहते मन में नहीं रहते वाणी में नहीं रहते वही पापों को नाश कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि निज स्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं और दिव्य चक्षु देते हैं जिससे हर घट में आत्मदर्शन होता है। आत्मवत सर्वभूतेषु और 1 घंटे में ही इतनी बड़ी प्राप्ति कराने वाले अक्रम मार्ग के ज्ञानी तो न भूतो न भविष्यति है। ज्ञानी पुरुष के पास से आत्मा की अनुभूति हो जाने के बाद आत्मा निरंतर लक्ष्य में रहता है। मन, वचन, काया की सारी क्रियाएं होती रहती हैं, किंतु उसमें खुद करता नहीं है। इतना ही नहीं, कौन इसका करता है उसकी स्पष्ट जागृति रहती है। फिर चिंता कभी नहीं होती, संसारी दुखों का अभाव रहता है। करोड़ों जन्मों का पुण्य प्रकट होता है, तब ज्ञानी पुरुष के दर्शन होते हैं। और सिर्फ दर्शन से तृप्त न होते, ज्ञानी पुरुष ने जो वस्तु पाई है वह वस्तु खुद को भी प्राप्त हो जाए, वह दर्शन में आ जाए, तो फिर जन्म जन्म के फेरे का अंत आता है। ज्ञानी पुरुष की कृपा से स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तथा आत्म जागृति प्रकट हो जाती है। तत्पश्चात खुद के सारे दोष देख सकते हैं, और जो देश देखे कि वे सब अवश्य क्षय होते हैं। अक्रम ज्ञान प्राप्त करने के बाद आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं होते। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तभी हो जाते हैं जब निज स्वरूप का ज्ञान भान नहीं होता। निज स्वरूप की जागृति रहने से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होते। निरंतर अंदर भीतर शुक्ल ध्यान और बाहर व्यवहार में धर्म ध्यान रहता है। शुक्ल ध्यान ही प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण है। जहाँ तक अपनी आत्मा का स्पष्ट अनुभव नहीं होता, वहाँ तक ज्ञानी पुरुष ही अपनी आत्मा है। अक्रम मार्ग पूरा समझ लेने की जरूरत है। अक्रम मार्ग पूरा समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विज्ञान है, उसे वैज्ञानिक ढंग से समझ लेना ज़रूरी है। ज्ञानी के सानिध्य में उनको पूछ पूछ कर समझ पूरी तरह फिट कर लेनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष के पास करने का कुछ नहीं होता, बात को सिर्फ समझने की ही है। वस्तु को यथार्थ समझने से ही सम्यक दर्शन होता है, और यथार्थ जानने से सम्यक ज्ञान होता है। वस्तु को यथार्थ समझने से सम्यक दर्शन होता है, और यथार्थ जानने से सम्यक ज्ञान होता है। जो जान गया और समझ गया, उससे सम्यक चारित्र होता है। जो जान गया और समझ गया, उससे सम्यक चारित्र होता है। भगवान ने कहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो ज्ञानी पुरुष के पीछे पीछे चले जाना, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना। मोक्ष यानि मुक्त भाव, सच्ची आज़ादी। कोई ऊपरी नहीं, कोई अंडरहैंड भी नहीं, ऐसा मोक्ष संसार में रहते हुए भी प्राप्त करके संपूज्य श्री दादा श्री गृहस्थियों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, ताकि गृहस्थियों को भी हिम्मत रहे कि हम भी मोक्ष पा सकते हैं। और मोक्ष के लिए संसार त्याग की ज़रूरत नहीं, मगर अज्ञान दूर हो गया तो संसार में मोक्ष सहज प्राप्त हो जाता है। मोक्ष सुलभ है, किंतु मोक्षदाता अति अति दुर्लभ है, क्योंकि मोक्षदाता ऐसे ज्ञानी पुरुष वर्ल्ड में कभी ही प्रकट होते हैं। मोक्षदाता ऐसे ज्ञानी पुरुष वर्ल्ड में कम ही प्रकट होते हैं। यदि ऐसे पुरुष मिल जाए तो उनके चरणों में सर्व भाव अर्पण करके उनके पीछे पीछे चले जाना ही हितकारी है। ज्ञानी पुरुष के सिवा दुनिया में दूसरी कोई भी चीज़ हितकारी नहीं होती। उनके पास माया सदा के लिए विदा लेती है। संसार की माया जाल से सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही छुड़ा सकते हैं। जो खुद मुक्त हैं, वही दूसरों के बंधन से छुड़ा सकते हैं। खुद बंधन में फंसा है, वह दूसरों को कैसे छुड़ा सकेगा। जिसे सिर्फ मोक्ष की ही एकमेव कामना है।